नमस्कार भारत, आज है 12 मई दिन शनिवार और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। कर्नाटक की 222 विधानसभा सीटों के लिए आज होगी वोटिंग। सिद्धारमैया और येदियुरप्पा की किस्मत ईवीएम में हो जाएगी कैद।
5,06,00,000 हमारे मतदाता हैं, 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ में ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं।
तीसरी बार नेपाल की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी, आज विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। रेहान फजल की विवेचना में आज सुनिएगा गुजरे जमाने के मशहूर गायक तलत महमूद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। 3 महीने चले धुआंधार चुनाव अभियान के बाद आज कर्नाटक की कुल 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोड़ा की जनता दल सेक्युलर के बीच त्रिशंकु मुकाबला है। आज 4,96,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान कराने के लिए 55,600 पोलिंग बूथ बनाए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3,50,000 सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे तो उनका देश उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। वॉशिंगटन में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद बोलते हुए पोम्पियो ने कहा है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ हुई उनकी बातचीत सार्थक रही थी। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाला कोई भी समझौता तेजी से लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जांच कार्यक्रम पर आधारित होगा। पोम्पियो ने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया ने 3 अमरीकी नागरिकों को रिहा कर अगले महीने राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग उनके बीच होने वाली ऐतिहासिक वार्ता से पहले माहौल बेहतर किया है। माइक पोम्पियो ने कहा,
The release of these three citizens helped set the conditions for a successful meeting between President Trump and Chairman Kim.
इन 3 अमरीकी नागरिकों की रिहाई ने राष्ट्रपति ट्रंप और चेयरमैन किम के बीच कामयाब वार्ता के लिए माहौल बनाया है। हम 12 जून को सिंगापुर में होने वाली वार्ता को अमरीकी और कोरियाई लोगों और पूरी दुनिया के लिए कामयाब बनाने के लिए उत्तर कोरिया के साथ मिलकर तैयारी करेंगे। हम आज जहां हैं वहां राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति मून के कुशल नेतृत्व के बिना नहीं पहुंच सकते थे। वहीं उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहेगा और यही उसकी प्राथमिकता है। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर अमरीका के प्रतिबंध फिर से लागू होने से यूरोपीय कंपनियों पर होने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा की है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को चिंता है कि ईरान में कार्य कर रही यूरोपीय कंपनियां अमरीकी प्रतिबंधों के तहत दंडित की जा सकेंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते से अमरीका को अलग करते हुए ईरान पर फिर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। फोन पर हुई वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मे इस मुद्दे पर वार्ता के लिए सहमत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गरीब देशों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $10 अरब का फंड स्थापित करने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और 4 क्षेत्रीय विकास बैंक शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। 26 करोड़ बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि साल 2030 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी पैसा जुटाने से वो अभी बहुत दूर हैं। नासा मंगल ग्रह पर एक बेहद छोटा हेलीकॉप्टर भेज रहा है। ये किसी ग्रह पर भेजा जा रहा पहला विमान है। द रोवर कॉप्टर अगले 2 साल के अंदर लॉन्च किया जाएगा और अगर ये कामयाब रहा तो नासा मंगल की चट्टानों को पार किए बिना ही इस लाल ग्रह का अध्ययन कर सकेगा। ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 1.5 किलो का होगा और इसके ब्लेड धरती पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से 10 गुना तेजी से घूमेंगे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbcहिंदी.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरीश द्विवेदी। कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ी ही देर बाद से वोट डाले जाएंगे। आज का दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रहे पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर तीनों के लिए बेहद खास है। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं लेकिन आज 222 सीटों के लिए ही वोट डाले जा रहे हैं। जयनगर और आरआर नगर सीटों पर बाद में मतदान कराया जाएगा। सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
राजा राजेश्वरी नगर या आरआर नगर क्षेत्र में चुनाव स्थगित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बेंगलुरु के इस क्षेत्र में जो वोटर आईडी कार्ड एक अपार्टमेंट में मिले थे वो सारे के सारे असली थे, लेकिन चुनाव अधिकारियों के जांच के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवार ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है कि 5000 से भी ज्यादा टी शर्ट किस लिए उस क्षेत्र में पाए गए थे। जब मतदाताओं से वोटर आईडी कार्ड लिए गए थे तब उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार मुनिरत्ना की ओर से पानी के कैन भी दिए गए थे। कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सीईओ संजीव कुमार ने कहा,
देखिए 9000 से ज्यादा जो मतदार हैं और वो भी ऐसे मतदार जो गरीब और बहुत ही वल्नरेबल मतदार हैं, उनका कार्ड सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके कोई रखा है और उसमें पैसे का व्यवहार भी है, बहुत तरह का इंड्यूसमेंट भी है, पर ऑल्सो एक तरह का थ्रेट और कोएर्शन भी है। तो इन मतदारों को ये भी नहीं पता होगा कि अल्टरनेटिव 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लेके ये वोट कर सकते हैं। सो इनको यदि वोट का राइट सचमुच देना है वो भी फ्री एंड फेयर, तो जरूरत है कि हम थोड़ा समय लें।
इसका मतलब ये कि राजा राजेश्वर नगर क्षेत्र में चुनाव 28 मई को होगा। इससे पहले बेंगलुरु के जयनगर क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार की मृत्यु हो गई थी। मतलब ये कि 224 सदस्यों की कर्नाटका विधानसभा में आज 222 क्षेत्रों में मतदान होगा। सीईओ संजीव कुमार ने कहा,
हमारे 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं और 5,06,00,000 हमारे मतदाता हैं। 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ में ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं।
प्रमुख उम्मीदवारों में से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूरू के चामुंडेश्वरी क्षेत्र से और बागलकोट के बदामी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा शिकारीपुरा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमार स्वामी भी सिद्धरामैया की तरह रामनगरम और चनपटना क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कर्नाटका में करीब 120 से भी ज्यादा बीजेपी के नेताओं ने सारे देश से कर्नाटका में आकर भाग लिए। इसका परिणाम 15 मई को मिलने वाला है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई मुद्दे उठाए गए और बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन कर्नाटक के युवा आगामी नई सरकार से अपने लिए क्या चाहते हैं और उनके लिए कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, यही जानने के लिए इमरान कुरैशी ने कुछ युवाओं से बात की।
एक मुद्दा विमेन की सेफ्टी एंड प्लस इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी बैंगलोर में अब बढ़ते जा रही है तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं गवर्नमेंट।
मेरे को मेन प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल में किस पार्टी है अभी, वही आना चाहिए इधर, क्योंकि एलोकेशन ऑफ फंड्स में सब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिद्धरामैया कांग्रेस से इधर और बीजेपी सेंटर से है, सेंटर बोलता है हम फंड्स रिलीज करें, सिद्धरामैया बोले फंड्स नहीं रिलीज करें, सो ये गैप बिटवीन सेंटर और स्टेट वो थोड़ा कम हो जाएगा।
जो मेरे को लगता है कि इम्प्रूवमेंट लेके आया है, जो सोसाइटी के लिए कुछ किए होंगे रेट, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही करेंगे, वैसा ही डिसाइड करता हूँ मैं तो।
हमारे लिए जो भी इंसान लाइक अच्छा बेनिफिट लाइक इट माइट बी द रोड और व्हाट मीन द सिक्योरिटी फॉर द गर्ल्स, इन सब चीज़ों में देख के वोट करेंगे।
ये 5 साल पहले देखा है इतना डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहा था, फिर बहुत ये कम्युनल टेंशंस हो रहा था ये स्टेट में, वो कम हो जाएगा बीजेपी के आने के साथ।
विमेन की सेफ्टी एंड प्लस इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी बैंगलोर में अब बढ़ते जा रही है तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं गवर्नमेंट।
ये थी कर्नाटक के कुछ युवाओं की आवाज़ जो बता रहे थे कि आने वाली जो सरकार है उससे वो क्या चाहते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के अधिकारियों और जवाहरलाल नेहरू के बीच मत विरोधों का जिक्र किया। राजनीति के अखाड़े में फौज का जिक्र कितना उचित है? क्या फौज को राजनीति से अलग नहीं रखा जाना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 मई को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैत्री का संदेश लेकर नेपाल पहुंचे हैं। कल उन्होंने जनकपुर में जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और भारत इस दोस्ती के महत्व को समझता है।
नेपाल लैंड लॉक न रहे बल्कि लैंड लिंक और वाटर लिंक हो, हम प्रधानमंत्री ओली जी के इस विजन को साकार करने में हर संभव सहायता और प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 साल पहले आर्थिक नाकेबंदी के दौरान नेपाल के लोगों को जो परेशानी हुई थी, बहुत सारे लोग उसके लिए भारत को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इस बार भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि संपर्क बढ़ाने की परियोजनाओं के साथ ही आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। बीते दिनों में पाकिस्तान और चीन नेपाल के करीब आए हैं और ये भारत के लिए चिंता का विषय है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस गर्मजोशी से नेपाल के साथ हाथ मिला रहे हैं, उससे पिछले महीनों में पैदा हुई कटुता क्या धुल जाएगी? यही सवाल पूछा हमारी सहयोगी मानसी दास ने नेपाल के अखबार नागरिक दैनिक के प्रधान संपादक गुनाराज लुइटेल से।
एक महीने के अंतराल में ही हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का इंडिया में विजिट हुआ, उसके 5 ही हफ्ते में फिर भारतीय प्रधानमंत्री का जो भ्रमण हुआ, ये जो जिस तरह का एंगेजमेंट आपस में हो रहा है, इससे दिखाई देता है कि दोनों देश के संबंध अच्छे खासे तौर पे ले जाने के लिए ये मददगार ही होगा। लेकिन वो इंगेज होना चाहिए, और आमतौर पर जो जनमानस में एक किस्म का आशंका है जिस तरह का नाकाबंदी हुआ था पिछले बार, उससे पब्लिक अभी तक भी नाखुश है। उनके जो सोशल मीडिया में आप देख भी सकते हैं कि वो ट्रेंडिंग हो रहा है कि माफी मांग लेना चाहिए जो घटना हुआ था इस तरह का। फिर भी जो पब्लिक के मन में थोड़ा सा संदेह है, उसका भी धीरे धीरे समाधान होकर जाएगा।
नेपाल के चीन के साथ इस बीच में संबंध काफी बेहतर हुए हैं और भारत के साथ भी संबंध अच्छे होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चीन के साथ नेपाल के संबंधों का असर भारत के साथ उसके संबंधों पर पड़ सकता है?
भारत के साथ जो हमारा संबंध है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं सांस्कृतिक तौर पर, भाषिक तौर पर, और लंबे अरसे से हमारा ये खुला सीमाना है। इसीलिए वो तो चीन के साथ हमारा अच्छा संबंध होने का ये मतलब नहीं है कि भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं रहेगा, और नेपाल भी दोनों देश के तरफ अच्छा संबंध रखने में लग रहा है। अब पहले तो भारत से भी इस तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री का भ्रमण ही इतनी जल्दी जल्दी होता नहीं था। पहले आई के गुजराल साहब प्रधानमंत्री जी थे, उस वक्त नेपाल के विजिट हुआ था बायलैटरल तौर पर, फिर 17 वर्ष के बाद मोदी जी ने ही विजिट किया है। लेकिन नेपाल का ये वास्तविकता है कि हम दो बड़े देश के बीच में हम है, तो हमें दोनों देश के साथ ही अच्छा खासा संबंध बनाकर आगे बढ़ना है।
ये थे नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार गुनाराज लुइटेल, जो बता रहे थे कि चीन से नेपाल की नजदीकी का मतलब ये नहीं है कि नेपाल भारत से दूर चला गया है, क्योंकि दोनों देश सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और कूटनीतिक रूप से एक दूसरे के लिए बेहद अहम हैं। और आज भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल में क्या कार्यक्रम रहने वाला है, ये जानने के लिए हमने बात की बीबीसी नेपाली सेवा के हमारे सहयोगी महेश आचार्य से।
अपोजिशन पार्टी के लीडर्स से मिलेंगे और तराई केंद्रित दल के नेताओं से मिलेंगे। वो मोदी का भ्रमण से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक पत्रकार सम्मेलन के क्रम में ये कहा था कि नेपाल के जो सब पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे भारत एंगेज करना चाहता है, इसीलिए मेरे हिसाब से उसी के एक हिस्सा के रूप में वो भेंटवार्ता करेंगे विपक्षी पार्टियों से, और एक जो सत्तारूढ़ घटक के एक प्रमुख नेता से भी वो मिल रहे हैं आज प्रचंड से। और उससे पहले उनका मुक्तिनाथ जाने का कार्यक्रम है जहाँ पर वो जाकर पूजा अर्चना करेंगे और वापस काठमांडू आएंगे तो उनका एक सिविक रिसेप्शन है, नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम है।
नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे थे नेपाल में हमारे सहयोगी महेश आचार्य। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा को आज अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई है। दिलनवाज पाशा हमारे साथ तमाम अखबारों को लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या लिखते हैं अखबार?
जी, आज के द हिंदू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते हुए तस्वीर प्रकाशित की गई है। मोदी की दो उंगलियाँ ऐसे हैं जैसे मानो विजय का इशारा कर रहे हों। और इसके अलावा अमर उजाला लिखता है, नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे। जानकी मंदिर पहुंचे नरेंद्र मोदी, ने वहां 45 मिनट बिताए और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। ये तस्वीर अलग अलग अखबारों में है, वहां के पुजारियों के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर। कई अखबारों ने इस खबर को, ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर तस्वीर के साथ जगह दी है। इसके अलावा एक और खबर जो सभी अखबारों में है, जस्टिस जोसेफ का नाम दोबारा केंद्र को भेजने पर कॉलेजियम सहमत हुआ है। ये खबर आज सभी अखबारों में है। और इसी के बगल में एक और खबर है, मुंबई के सुपर कॉप कहे जाने वाले हिमांशु राय की खुदकुशी की। कैंसर से पीड़ित आईपीएस अधिकारी हिमांशु राय ने कल खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ये खबर अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरीके से प्रकाशित है। इसके अलावा जगह दी गई है भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले के बयान को, जिन्होंने कहा है जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक हैं, उन्हें उन्होंने महापुरुष कहा है। सावित्रीबाई फुले भारतीय जनता पार्टी की दलित सांसद हैं और उनके हाल के दिनों में बयान जो हैं सुर्खियाँ बनते रहे हैं। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ आयकर विभाग ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। उसमें ब्यौरा दिया गया है किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में ये सभी परिजन उनके शामिल रहे हैं। ये खबर भी अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्ण काल के सबसे सुरीले गायकों में गिने जाते हैं तलत महमूद। कंपन वाली और बेहद मनमोहक आवाज के मालिक तलत महमूद के गाए सैकड़ों नगमे और गजलें आज भी संगीत प्रेमियों को मदहोश कर रहे हैं। तलत महमूद की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए।
कहा जाता है कि 50 के दशक में जब भी संगीत की कोई महफिल होती थी जिसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जैसे दिग्गज भी मौजूद रहते थे, सबसे आखिर में तलत महमूद को बुलाया जाता था। ये रुतबा था तलत महमूद का। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश या किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं या गाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल से मिलेगा जो अपनी आवाज़ में तलत महमूद जैसी मधुरता और नजाकत पैदा कर सके।
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का,
अफसाना मेरा बन गया अफसाना।
मानिक प्रेमचंद ने हिंदी फिल्म संगीत पर कई किताबें लिखी हैं, उनमें से एक है तलत महमूद की जीवनी, द वेलवेट वॉइस। तलत की आवाज से उनका फैसिनेशन शुरू हुआ था 1958 में।
मैं कुछ 7 साल का था जब मेरी फैमिली किसी गाड़ी में लौट रही थी रिपब्लिक डे परेड से। उस टाइम रेडियो पे ये गाना बज रहा था, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। ये गपशप कर रहे थे एल्डर्स और जब ये गाना ब्रॉडकास्ट होने शुरू हुआ, इनकी बातें कम हो गई और एक खामोश सा वातावरण बन गया वहां पर। तो एक किस्म का रिस्पेक्ट दिया गया इस गाने को मेरे एल्डर्स ने। दिस वाज द एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ माय फैसिनेशन फॉर तलत महमूद।
रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाल बिछाए, आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले छाए।
24 फरवरी 1924 को लखनऊ में पैदा हुए तलत महमूद ने लखनऊ के अदब और तहजीब को आत्मसात कर लिया था। वो जितना मीठा गाते थे उतना ही मीठा बोलते भी थे। तलत महमूद की नातिन सहर जमा एक पत्रकार हैं और मिरर नाउ चैनल से जुड़ी हुई हैं।
दे वेरी जेंटल मैनरिज्म्स और लखनऊ की तहजीब तो बहुत ज़्यादा कूट कूट के जैसे उनके अंदर थी और मगर मिजाज के बहुत जेंटल थे, हसमुख बहुत थे, मजाक बहुत करते थे और बहुत ज़िंदा दिल थे। मैंने तो उनके साथ रिलेटिवली थोड़ा कम वक्त गुजारा है। मेरी अम्मी ने तो पूरा अपना बचपन उनके साथ गुजारा है बॉम्बे में। वो जब छोटे छोटे थे वो उनके स्कूल के कॉमिक्स पढ़ते थे, उनसे ज़्यादा वो आइसक्रीम के शौकीन थे। ही वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड अप एज अ जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, वेरी वेल प्रेजेंटेड, वेरी क्रिस्प, एंड ऑफ कोर्स ही लव्ड ट्रैवलिंग। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फैंस एंड फॉलोअर्स। आई थिंक उसके एक सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले गायक थे जिन्होंने वर्ल्ड टूर्स शुरू किए। उनसे पहले किसी ने वर्ल्ड टूर्स नहीं किए थे और उन्होंने ये शुरू किया बिल्कुल एट द पीक ऑफ हिज करियर। आप इमेजिन करिए कि 1950s में उन्होंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड टूर किया टू ईस्ट अफ्रीका एंड ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल। उसके बाद इनफैक्ट लता जी ने परफॉर्म किया एंड ही वेंट टू मैडिसन स्क्वायर एज वेल।
तलत महमूद ने संगीत की पढ़ाई लखनऊ के भाटकंडे संगीत महाविद्यालय में की, जिसे पहले मैरिस कॉलेज कहा जाता था। तलत प्रवेश परीक्षा के रिटन टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब उनकी स्वर परीक्षा हुई तो परीक्षक उनका आलाप सुनकर हतप्रभ रह गए और बिना कोई सवाल पूछे तलत महमूद का दाखला कर लिया गया।
इनको कुछ आता तो था नहीं, थ्योरी तो कुछ इनकी थी नहीं, ये तो ऊपर वाले की वाणी लेके आए थे। ये था कि उनको ये जो थियरी वगैरह होती है, आज भी कई लोग सरगम को नहीं समझते, लेकिन जब आवाज उनकी निकली, जब उन्होंने आलाप छेड़ी तो उन्होंने कहा रे बाप रे ये क्या हो गया।
40 का दशक शुरू होते होते वो ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से गाने लगे थे। 1941 में वो कलकत्ता चले गए जहाँ HMV ने 30 रुपए प्रति गाने पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कलकत्ता में काफी नाम कमाने के बाद तलत महमूद बम्बई पहुंचे। आगे की कहानी खुद उनकी जुबानी।
जब मैं बम्बई आया हूँ तो यहाँ तो बहुत से लोगों को हमेशा बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन चूंकि मेरा गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहलाने से भी बेइंतहा पॉपुलर था तो वो तो फौरन ही आती है, मुझे लोगों ने ऑफर्स देना शुरू किए। लेकिन ये एक सबसे बड़ी शर्त होती थी पहले कि आप पहले गाना रिकॉर्ड करें और हम वो देखें, क्योंकि आप जानते थे ना कि बॉम्बे की इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो वो चीज़ ज़रा कुछ मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं थोड़े दिनों इंतजार करता रहा। इस अरसे में अनिल विश्वास साहब ने मुझे मैसेज भिजवाया कि भाई तलत तुम आओ, तुम्हारे लिए गाना तैयार है। तो मैं अनिल दा के पास भी नहीं गया और बैठा रहा घर पे। 3-4 दफ़ा उनका मैसेज आया, फिर वो एक दिन पता चला कि अनिल दा गाड़ी में बैठे चले आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे अगर कहा कि अच्छा था भाई क्या तमाशा है, तो मैंने कहा कि अनिल दा सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने मुझे ऐसा डरा दिया, मैं ही सोच रहा था कि शायद आप भी करें। कहते भाई आओ तो देखो तो अगर गाना तुम्हारे लिए बनाया, दिलीप कुमार के लिए गा रहे हो। मैंने जाके ये गाना रिहर्स किया, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो।
दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो, अपना बराया मेहरबाना मेहरबा कोई ना हो।
अपने करियर के शुरुआती दौर में उनकी आवाज में पाए जाने वाले कंपन की वजह से उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। ये अलग बात है कि यही कंपन, यही लर्जिश आगे चलकर उनके गाने की USP बनी।
वो बोलते भी इसी तरह से थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, उनको सुनने के लिए करीब में आना पड़ता था उनके। आजकल थोड़ा सा डिंग डॉंग हो गया है, गिटार सुटार बजने लगी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था। इनका जो नेचर था दैट वॉज ट्रांसलेटिंग इन टू हिज वॉइस, और बहुत अदबी आदमी थे ये। आई जस्ट डोंट मीन अलिफ बे पे थे पढ़ना लिखना, आई मीन डीप इन टू कल्चर एंड पोइट्री। आपने अगर इनके बारे में कुछ सोचा है, इनकी इनके गानों को अप्रिशिएट किया है, अगर आप उस टाइप का जौक और शौक रखते हैं तो आपको थोड़े ही वक्त में समझ आ जाएगा कि वन ऑफ द सेंट्रल फीचर्स ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ हिज म्यूजिक इज द गुड पोइट्री इन दोज सॉन्ग्स। दैट्स व्हाई द सॉन्ग्स हैव एंडेड अप सो ब्यूटीफुल। इनको वो रेंज नहीं थी जो मोहम्मद रफी की आवाज में थी, जो ऊपर जाना नीचे आना एंड अदर एक्सेप्शनल थिंग। इनकी आवाज में वो बैरिटोन नहीं था, जो मिसाल के तौर पे हेमंत कुमार की आवाज में था, वो ट्रेविल नहीं था जो मुकेश की आवाज में था। तो अपने जो दायरे में जो घूम रहे थे ये गजल के सॉफ्ट सिंगिंग के दायरे में, पिच का जो बैंड था, नॉट वेरी हाई पिच नॉट टू लो पिच, उसमें जो ये गा रहे थे वो गजल का काम उम्दा कर रहे थे और उसमें जो अल्फाज हैं वो क्रिटिकल हुआ करते थे।
तलत महमूद की मन्ना डे से बहुत नजदीकी दोस्ती थी। मन्ना डे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
एक बार मदन मोहन ने बम्बई आई मलिका ये गजल बेगम अख्तर के सम्मान में रात्रि भोज दिया जिसमें बम्बई की हर बड़ी संगीत हस्ती को बुलाया गया। जैसा कि उम्मीद थी, भोज से पहले संगीत की एक महफिल हुई और सबसे पहले तलत महमूद से माइक के सामने आने के लिए कहा गया। जैसे ही उनकी पहली गजल खत्म हुई, इतनी तालियां बजीं कि मेरे और मोहम्मद रफ़ी के बीचों बीच बैठे किशोर कुमार ने हम दोनों से फुसफुसा कर कहा, चलिए हम लोग चुपके से भाग निकलें, तलत के फैलाए जादू के बाद अब हम लोगों की कौन सुनेगा।
इस सब के बावजूद मात्र 40 साल की उम्र में तलत महमूद के करियर का अंत शुरू हो गया। 40 साल की उम्र में गायक आमतौर से अपने पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन 40 की उम्र में तलत का डिक्लाइन शुरू हो गया।
अर्ली बर्नआउट है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट यू नो एट 40 यू डोंट फोल्ड अप योर दुकान, कोई भी ऐसा नहीं करता। रफी साहब ने नहीं किया, किशोर ने नहीं किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, आप हेमंत कुमार, जहां पर भी आप देखें, 40 पे यू डोंट क्लोज अप योर शॉप एंड से आई एम रनिंग आउट ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन अर्ली बर्नआउट, टू मेनी ट्रिप्स अब्रॉड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और उसके बाद इनका थोड़ा दिल भी उठ गया था बिकॉज काफी कुछ नकल हुआ करती थी और इनको बुलाया जाता था, रिकॉर्ड करवाया जाता था, फिर किसी और से गाने गवाए जाते थे और फिल्मों में लिए जाते थे। उस आदमी से आप रिकॉर्ड करवाओ और फिर दूसरे किसी को दे दो गाने, तो वो अंदर ही अंदर घुटते जा रहे थे।
9 मई 1998 को पार्किंसन बीमारी से जूझते हुए तलत महमूद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मानिक प्रेमचंद को अभी तक उनसे अपनी आखिरी मुलाकातें याद हैं।
जब मैं इनको आखिरी 2-3 बार मिला था तो ये बोल नहीं पा रहे थे और थोड़ा सा पार्किंसन वाला इन पे दौर पड़ा था। मैं एक जज्बाती किस्म का इंसान हूँ और वो गालिब ने क्या कहा था कि मुझे मत छेड़, जोशी गिरिया से तूफान उठा दूंगा। मैंने उनसे उस टाइम पे भी बातें करता था और ये हाँ ना करते थे, मुझे समझते थे। आई यूज टू फील बैड फॉर अ पर्सन हु नॉट ओनली स्पोक वेल बट सैंग ब्यूटिफुली, और अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, somebody who I can't praise enough, वो बोल नहीं पा रहे, और मेरा कलेजा बैठा जाता था कि ये काश कि उनकी तकलीफ मुझे आ जाती थी। मेरे अंदर जो है मेमोरीज ये नहीं जा रही।
मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था ए।
विवेचना के बारे में लिखिएगा अपनी राय। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, थोड़ी चर्चा खेलों की कर लेते हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अपने सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर की 95 रन की धुआंधार नाबाद पारी की बदौलत ये मुकाबला एक गेंद रहते जीत लिया। आज 2 मैच खेले जाने हैं, पहला किंग्स इलेवन पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच और दूसरा मैच दिल्ली डेयरडेविल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच। और अब सुनिए मुख्य समाचार।
3 महीने चले धुआंधार चुनाव अभियान के बाद आज कर्नाटक की कुल 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे तो उनका देश उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। ब्रिटानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान पर अमरीका के प्रतिबंध फिर से लागू होने से यूरोपीय कंपनियों पर होने वाले प्रभाव को लेकर चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र ने गरीब देशों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए $10 अरब का फंड स्थापित करने की घोषणा की है। नासा मंगल ग्रह पर एक बेहद छोटा हेलीकॉप्टर भेज रहा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिनभर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुँचाया मीना कोटवाल ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।